का बढ़िया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर बढ़िया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900
چاندنی
بینکویٹ ہال
انٹیلیجنٹ چوائس لوکیشنز Sound System Innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience. Corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Sare package ka naam, Chandni Banquet Hall. Aaj hi call kijiye. 437-218-8734. ChandniHalls.ca. Chandni.
यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, प्लानिंग फॉर वेकेशन।
हवाई टिकट की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं।
अरे मेरे लिए कोई डील तो देखो।
और मशीन के बजाय रिप्रेजेंटेटिव से बात करें।
है ना एयरविंग ट्रेवल, होलसेल रेट, पाकिस्तान, इंडिया और मिडल ईस्ट, एवरीवेयर वेयर यू वांट टू ट्रेवल।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट।
पर्सनलाइज्ड ट्रेवल सॉल्यूशंस, अफोर्डेबल, इजी एंड डिस्काउंटेड एयरफेयर्स।
Airwing Travel and Tours, 905-272-2300
ویلکم بیک تمام سامعین کو جو 770 AM ڈائل پر سن رہے ہیں پروگرام ساز و آواز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد اور ہمارے ساتھ ہیں شازیہ ملک صاحبہ. جناب بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اب آپ کو ایک نئے سیگمنٹ پہ یعنی ایک اگلے سیگمنٹ میں لے کے چلیں گے جہاں آپ کو شازیہ ملک صاحبہ اسپیشل رپورٹ سنائیں گی. تو چلیں شازیہ ملک صاحبہ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی ویلکم بیک شازیہ جی, کیسے ہیں؟
تھینک یو عامر, تھینک یو جی. دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی اونٹاریوز لارجسٹ حلال پاکستانی بفے ویج ٹیسٹ. دو ان کے ریسٹورانٹس ہیں جی, ایک مسز ساگا, ایک اوکویل میں. آپ جائیں, انجوائے کا مزہ لیں. جو مسز ساگا کا ریسٹورانٹ ہے اس کا نمبر ہے 9052323663 اور اوکویل میں جو ہے 9052262294 ہے اس کا نمبر. ٹھیک ہے جی. تو جو جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کو ڈسکلیمر بھی چلایا تھا, تو بس اسی سیناریو میں ہم جو یہ آج کی رپورٹ کریں گے. یہ رپورٹ جو ہے آج میں نے بہت سارا جو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر جو رپورٹس آئی ہیں, ہندو کے اندر دا ہندوستان ٹائمز میں, دا جو ہے پرنٹ کے اندر آئی ہوئی تھی, اور ایکسپریس میں, اور بہت ساری, اور پاکستان کے تو سارے نیوز پیپرز میں تو تھی. اس میں سے میں نے یہ ساری نکال کے آپ کے لیے یہ رپورٹ بنائی ہے, اور اس کے اندر ہم جو ہیں سید اکبر حسین صاحب کا بھی کامنٹ لیں گے کہ اس کے کوئی سپل آؤٹ جو ہے وہ سارا بلیم جو ہے کہیں وہ عمران خان صاحب کے اوپر تو نہیں جا سکتا, اگر جائے گا اس کے کیا امپلیکیشنز ہیں, اور اگر فیض حمید صاحب جو ہیں کسی اور کے نیمز ریویل کرنا چاہیں گے تو جو اس میں انوالو ہو سکتے ہیں وہ کون ہوں گے. اچھا جی, یہ جو اسپیشل رپورٹ ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ جو یہ فارمر پاکستان کے اسپائی چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائر صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کو فیم آ گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا ایک ان کی پکچر آئی تھی جو ایک کپ انہوں نے اٹھایا ہوا تھا وہاں پہ افغانستان میں جب ٹاکس کرنے کے لیے گئے تھے, جب اس نے طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا 2021 میں. اس کے بعد یہ پکچر جو ہے ان کی بہت زیادہ مشہور ہو گئی تھی. ان کو آج اریسٹ کیا گیا ہے اور اب یہ فیس کر رہے ہیں کورٹ مارشل. ایک وقت ایسا تھا کہ یہ نئے آرمی چیف کے لیے رننگ میں تھے اور بن سکتے تھے, اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے کلوز تھے, کلوز کانفیڈنس میں سے ایک یہ تھے. لیکن اب جو ان کو کورٹ مارشل دیا جا رہا ہے تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بہت ہی زیادہ نئی ہے, اور اسی کی وجہ سے آج اس کو دنیا کے اندر دیکھا گیا ہے کہ بیکاز دس از فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری وین فارمر آئی ایس آئی ہیڈ از فیسنگ کورٹ مارشل. آپ کو پتا ہی ہے کہ آئی ایس آئی چیف کی جو پوسٹ ہوتی ہے اٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ان پاکستان ملٹری, اور جو ہے یہ کیونکہ پاکستان کی جو 75 प्लस ईयर्स की जो हिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस है उसमें ज्यादातर जो टाइम है उसमें मिलिट्री ने रूल पाकिस्तान को किया है, विच इज वेरी वेरी पावरफुल, आपको पता ही है। और जितनी भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी होती है वो इनके बगैर बनाई नहीं जा सकती है। तो इसलिए ये जो थी बहुत ही पावरफुल पोजिशन के ऊपर थे। अकॉर्डिंग टू ISPR ये जो है अब ये फेस कर रहे हैं कोर्ट मार्शल, और वो आज जो प्रेस रिलीज मैंने भी आपको सारी सुनाई थी इनकी ISPR की, जिसमें कि उन्होंने कहा था जी कि हमारे पास बहुत ही क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन जो है वो है, और उसके अंदर हम इसमें देख रहे हैं कि जो कैसे इनको जो है वो सारी जो चीजें सरफेस की हैं, जिसके के ऊपर आपको मैंने अभी बताया ही है कि इन्होंने भी बात की है जो PMLN के राणा सनाउल्ला और ख्वाजा आसिफ वगैरह भी हैं कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे और उसकी वजह से कोई जो इनके ऊपर एलिगेशंस आए हैं तो हमको ट्रस्ट करना पड़ेगा इनके ऊपर। ये जो मिलिट्री है उसने ये कहा था कि ये जो टॉप सिटी का केस है जो कि उसके जो हाउसिंग सोसाइटी के CEO मुईद अहमद खान साहब लेकर आए थे लास्ट ईयर, उस सिलसिले में कोर्ट ने कहा था कि ये अगर इल्जाम हैं सही, और ये भी जो इल्जाम आया था कि उन्होंने रेड्स किए थे तो उनके घर पे और सोना वोना चोरी किया था, तो उसमें भी ये बड़े संगीन इल्जाम है जिसके ऊपर आज मिलिट्री ने कहा कि हमको इनके ऊपर प्रोब बिठाने की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इंडियन डिफेंस और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कहते हैं जी कि ये केसेस रिलेटेड हैं करप्ट और जो करप्शन से, और रियल मोटिव जो था वो ये था कि जी जो करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब हैं वो जितने भी इनके डिट्रैक्टर्स हैं उनके खिलाफ इनफैक्ट वो क्रैक डाउन कर रहे हैं। फैज अमीद साहब जो हैं उनको फोर्स किया गया था अलेजली टू रिजाइन एज ISI बॉस जब जनरल मुनीर साहब जो थे ही टुक ओवर इन नवंबर 2022, और बड़ी मजे की बात यह है कि इन्होंने अर्लियर ही रिप्लेस जनरल फैज अमीद रिप्लेस जनरल मुनीर एज ISI चीफ इन 2018 आफ्टर हिज टेन्योर वॉज अब्रप्टली कट शॉर्ट। और वही वो कहते हैं कि जनरल मुनीर जो है वो बहुत ज्यादा इमरान खान से मिलना चाहते थे लेकिन वो इनसे मिलना नहीं चाहते थे, और वही बात है कि क्योंकि जनरल फैज अमीद इमरान खान साहब के बहुत क्लोज थे और इमरान खान साहब चाहते थे कि ये नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने तो इनको फिर नहीं किया जा सका था, क्योंकि 2018 के जो इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर भी ये चीजें सारी सामने आई थी कि शायद ये सारी की सारी जो इंजीनियरिंग थी ये फैज हमीद साहब ने की थी, और जो फैजाबाद के अंदर भी जो कुछ भी सारा कुछ हुआ था उसके अंदर भी इन्होंने बड़ी इंजीनियरिंग की थी अलेजली। क्योंकि तो ये जो है वो जैसे आज इंडियन मीडिया के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म आई है कि ही बिकेम कंट्रोवर्सीज फेवरेट चाइल्ड, और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे और बड़े क्लोज थे जनरल कमर बाजवा के भी क्योंकि दोनों ही बलोच रेजिमेंट से थे। जैसे जैसे टाइम गुजरा फिर इनके बीच में ताल्लुकात खराब होते गए जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के, और इसीलिए वो चाहते थे कि जब जनरल बाजवा छोड़ के जाएं तो फैज हमीद जो हैं वो आ जाएं इनकी जगह पे। अब ये जो सारे का सारा केस आया है तो इस सिलसिले में इमरान खान के साथ क्या हो सकता है और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन सारी चीजों को देखते हुए क्या चीजें सामने लाएगी, उस सिलसिले में हमारी जो आज बातचीत हुई है जनाब सैयद अकबर हुसैन साहब से वो हम आपको एक क्लिप सुनाते हैं और उसके बाद फिर हम अपना जो है ये रिपोर्ट कैरी ऑन करेंगे और आपको बताएंगे कि असल में क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। तो ये क्लिप सुने आप जो सैयद अकबर साहब ने हमसे बात की है, एंड देन उसमें आपको बहुत सारी चीजें बहुत अंदर की इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलेगी और फिर हम इसको आगे कैरी ऑन करेंगे अपनी रिपोर्ट को।
और तमाम सुनने वालों को ये ई आवाज रेडियो के तवासत से कुछ चीजें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। आज की मेजर डेवलपमेंट है कि फैज हमीद को जो है वो जेर हिरासत ले लिया है आर्मी अथॉरिटीज ने और कोर्ट मार्शल हो रहे हैं। देखें, अगर आप बिल्कुल ही एक ले मैन और एक आम आदमी की नजर से देखें ना तो ये दो गुंडों दो बदमाशों के दरमियान लड़ाई है। फैज हमीद आसिम मुनीर उनकी एक अपनी टेरिटरी है गुंडागर्दी के लिए और बदमाशी के लिए, और उसके अंदर आपने जो उसका बैकग्राउंड है वो अभी तक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे सुन लिया होगा। आप आजाद शाहीन टीवी पर मेरा और आदिल राजा का कोई 1.5 घंटे का वीलॉग इसके ऊपर सुन सकते हैं। तो ये तो एक आम फहम बात है कि जिसके अंदर जो है वो जिस तरह कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती, तो अगर कोई जो है वो अपना बदमाश बनने की कोशिश करेगा इस इलाके में, और वो फैज अमीन साहब अगर इस तरह की कोशिश करेंगे कि उनके पास बहुत ज्यादा मवाद है, बहुत ज्यादा शवाहद हैं, वीडियोज हैं, और वो किसी को भी नीचे लिटा सकते हैं बशमूल आसिम मुनीर के, तो ऐसे होने नहीं जा रहा। और कम अज कम आसिम मुनीर जो है वो उसको अपने जो उसका इलाका है उसके अंदर कोई बदमाशी नहीं करने दे सकता, क्योंकि एक ही बदमाश होगा, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि अगर आप इसको थोड़ा ऑब्जेक्टिव तरीके से देखें ना, तो अभी कोर्ट मार्शल किसका हो रहा है? फैज हमीद का। फैज हमीद के ऊपर लेट से चार्जेस हैं, करप्शन के चार्जेस हैं, हुकूमती जो रिसोर्सेज हैं, असासे हैं, उनको गलत इस्तेमाल बतौर DGISI या कोर कमांडर या एडजुटेंट जनरल, इन्होंने लंबा पलंदा उसके लिए खड़ा किया और ऑलरेडी ये केस तैयार किया हुआ, बाद में उसको पकड़ा है, ठीक है जी। अभी ये है कि जब वो अपनी गवाही में या अपने स्टेटमेंट में वो ये कहे कि जनाब ये मैंने तो ये काम इस वजह से किया कि इमरान खान ने जो है वो था प्राइम मिनिस्टर और मैं जो था वो उसके ताबे था और डायरेक्टली उसको आंसरेबल था, और जो है मैंने ये सारा मलबा जो है वो इमरान खान पे डाल दें, तो इससे क्या होगा कि वो फिर आसिम मुनीर को जो है ना एक तीर से दो शिकार मिल जाएंगे। इसमें ये नहीं होगा कि फैज हमीद इससे बच जाएगा, बल्कि फैज हमीद भी जाएगा और साथ कौन? इमरान खान भी। कम अज कम इनकी कोशिश ये होगी कि ये एक तीर में दो शिकार। तो फैज हमीद को ये लाइन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। दूसरा ये है कि फैज हमीद सारा मलबा उठा के बाजवा पे और आर्मी के जो सिस्टम है उसके ऊपर डाल दें। यही रास्ता वो है कि जिसके अंदर एक तो जो फैक्ट्स हैं, जो कि हकीकत है, जो सच्चाई है, वो सामने आ जाएगी, और इससे ये है कि कम अज कम उसको फैज हमीद को एक सेविंग ग्रेस के जी ना खेडांगे तो ना खेडन देंगे उस वाले हिसाब से, इफ ही गोज डाउन एंड ही टेक्स आसिम मुनीर ऑल्सो विद हिम, तो चलें उसको एक सेविंग ग्रेस मिल जाएगी। तो ये अभी देखने की बात है। दिस इज जस्ट अ लिटिल वेरी वेरी ब्रीफ ऑडियो क्लिप जो मुझे ई आवाज या शाजिया ने कहा कि मैं इसके ऊपर चंद एक बातें आप लोगों के साथ शेयर करूं। तफसीलन शाजिया के साथ भी ये बात हो सकती है, और आप लोग जो हैं ये आजाद शाहीन टीवी के ऊपर भी इसके ऊपर मुफसल बातचीत सुन सकते हैं। देखें, इसके अंदर बहुत हमारा गहरा ताल्लुक रहा है फौज के साथ, इन लोगों के साथ, और आखिर में जाते जाते ये है कि चंद एक अशखास जिन्होंने वर्दी पहनी हुई है और जो कि बहुत जिम्मेदार पोजीशंस पे हैं फौज पे, बहुत सीनियर पोजीशंस पे हैं, जिनके अंदर जनरल फोर स्टार साहिर शमशाद मिर्जा साहब हैं, फिर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब हैं जो एडजुटेंट जनरल हैं पाकिस्तान आर्मी के, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अहसन नवाज साहब हैं जो कि मिलिट्री सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान आर्मी के, इन सब लोगों को चाहिए कि अभी इस चीज को एक किसी कानूनी जाब्ते के तहत चलाएं और कौम के साथ ये जो इन्होंने खिलवाड़ मचाया हुआ है इसको स्टॉप कर दें। इसके साथ डायरेक्ट बांग्लादेशी साइड के ऊपर भी जो है वो छापा लगा सकते हैं। फौज में छापा लगाने का यानी नकल करने का जो है ना वो बहुत एक रुझान है, खासतौर से पाकिस्तान आर्मी में, उसको कहते ही छापा है। तो अगर आपने छापा लगाना है तो थोड़ा अकल से लगाएं, और अकल से आप इस तरह लगाएं कि जिस तरह बांग्लादेश आर्मी में उन्होंने चुन चुन के बड़े सीनियर लोगों को फटे पे लगाया है, तो अगर आप पाकिस्तान आर्मी में भी ये किसी समझ के साथ, किसी सच्चाई के साथ करना चाहते हैं, तो ये जो दूसरी पीढ़ी है ना जिसके अंदर लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, मेजर जनरल्स हैं, इनकी कहीं ना कहीं बचत हो जानी है। बाकी जो गंदे लोग हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, जो वर्दी के अंदर रहते हुए इन्होंने कत्ल किए हैं, इन्होंने अबडक्शन किए हैं, इन्होंने टॉर्चर्स किए हैं, इन्होंने लोगों की चादर चार दीवारी पामाल की है और हजार किस्म के जो है ना इंसानियत सोच काम किए हैं पिछले चंद सालों में, तो उनको तो उसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी। तो ये चंद एक चीजें थी जो फौरी तौर पर मैं शेयर करना चाहता था। तो आई होप आगे चलकर इसके साथ दोबारा मौका मिलेगा आपके साथ तफसील से बात करने का। बहुत शुक्रिया।
تو یہ تھے جناب سید اکبر حسین صاحب، انہوں نے ایک اپنی طرف کا ایک سیناریو دیا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں اب یہ جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے ان کا، اس کے اندر جب ملٹری ان سے پوچھے گی جنرل ہمیں فیض حمید صاحب سے کہ بھئی آپ کتنے عمران خان صاحب کے قریب تھے، آپ نے ان کے لیے کیا کیا کچھ کیا، آپ نے 2018 کا انجینئر کیا سارا الیکشن کہ نہیں کیا، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ان سے پوچھی جائیں گی. تو جیسے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے لیے سیف یہی ہوئے گا کہ یہ ان سارے لوگوں کے، جیسے کہ جنرل قمر باجوہ اینڈ ملٹری، ان کو بولیں جی کہ جو ہے یہ میں نے سارا کچھ، ظاہر ہے کہ اس میں اکیلا بندہ کوئی نہیں ہو سکتا نا، جیسے کہ رانا ثناء اللہ نے بھی آج کہا ہے کہ اکیلا نہیں یہ کوئی بندہ کام کر سکتا، اس کے اندر اور بھی بہت سارے لوگ ہوئیں گے. بہرحال جی یہ جو ہے ان کی جو سٹوری ہے، یہ ہے تو بڑی روزی سٹوری شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر ان کے جو جنرل فیض حمید کے جو پرابلمز تھے وہ بڑھنے شروع ہو گئے تھے. یہ جو 6 سینئر موسٹ جنرلز جو تھے ان کے نام جس وقت ٹاپ 2 ملٹری آفیسز کے لیے اپروول کے لیے بھیجے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو نومبر 2022 میں، اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو تھی وہ ٹاپل کی جا چکی تھی اور ایک انٹرم سیٹ اپ تھا، تو پرائم منسٹر جو شہباز شریف صاحب تھے انہوں نے جنرل منیر جو ہے اس کا نام ریکمینڈ کیا. اور جیسے ہی جنرل فیض کو پتا چلا کہ جنرل منیر جو ہے سی او اے ایس بن رہے ہیں تو انہوں نے ریزائن کر دیا. پھر اس کے بعد ان کی بدبختیاں واقعی شروع ہو گئیں، ان کا نام جو ہے نو فلائی لسٹ پہ ڈالا گیا بائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ان کے اوپر ریسٹرکشنز لگائے گئے، یہ موومنٹ نہیں کر سکتے تھے. اور اس کے بعد پھر اب یہ جو کیس آیا ہے معید خان کا، اس کے اندر جو ہے ان کو اب کھینچا گیا ہے، جیسے کہ ہم مطلب عام زبان میں ہم بات کر سکتے ہیں. اور اگر یہ سچ رہا اور اگر یہ ایلیگیشنز ان کے خلاف جو کہ بڑے ہی سیریس نیچر کے ہو سکتے ہیں اگر یہ آگے سامنے، کیونکہ آج تک تو آپ کو پتا ہے کہ ملٹری بالکل سیکرٹ کاؤ ہوتی تھی، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. فار دا فرسٹ ٹائم کیسے انہوں نے پیسج دیے سارے اپنے لوگوں کو، خاص طور پہ جنرل مشرف کو اور جنرل باجوہ کو اور اسی طرح دوسروں کو، تو ان کو جو اب کھینچا ہے اس کا مطلب ہے کہ ملٹری جو ہے اب اپنی ریپیوٹیشن کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے. اور اگر ایسا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے تو یہ جو ملٹری کے سامنے بات آ گئی تھی کہ اپنی ریپیوٹیشن کو انڈر مائن کرنے کے بجائے آرم فورسز، آئی ایس آئی، پاکستان رینجرز کو ضروری یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے ایک انکوائری بٹھائی جائے. اور یہ ایک انکوائری کمیشن جو تھا اپریل میں اس سال فارم کیا گیا تھا، اس کو انہوں نے نام دیا تھا ملٹری والوں نے سیلف اکاؤنٹبلٹی جیسچر. اور اس میں انہوں نے پھر کہا تھا کہ جی اس میں ہم نیکسٹ منتھ یعنی کہ اپریل میں، مارچ میں انہوں نے کہا جی کہ یہ وی ول شو ا سیلف اکاؤنٹبلٹی جیسچر مارچ میں، اور اپریل میں پھر انہوں نے یہ انکوائری کمیشن بٹھایا. اس کے اندر پھر جو ہے انہوں نے یہ ساری وہ کہتے ہیں جی ہم نے پروب کی. انٹیریئر منسٹر جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے بھی کہا جی کہ یہ پروب ابھی انڈر وے ہے اور جو ہے وہ چل رہی ہے. اس وقت یعنی کہ مارچ کی اب ہم بات کر رہے ہیں، مارچ اپریل کی، اس وقت انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ جو پروب ہے انڈر وے ہے اور اس کے اوپر جو ہے ملٹری دیکھے گی، لیکن جو ملٹری کورٹس ہیں وہ ہی اس کے اوپر دیں گی. اس وقت جو راولپنڈی کی کورٹ تھی اس نے ایٹ دا سیم ٹائم ان کے جو بھائی ہیں نائب تحصیلدار نجف ریٹائرڈ جو ہیں ان کو بھی جوڈیشل کسٹڈی میں لیا تھا کرپشن کیس کے اوپر، اور پھر ان کے اوپر بھی جو ہے تو کیس چلایا گیا. تو آج جو ہے یہ جو ساری خبر آئی ہے اس نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان کے اندر بھی لوگوں کی بڑی آنکھیں جو ہیں وہ چونکائی ہیں، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ فار دا فرسٹ ٹائم ملٹری نے اتنا سخت ایکشن لیا ہے اور اس کے اوپر اب دنیا بڑے غور سے اس کو دیکھ رہی ہے. اس کے امپلیکیشنز ملک میں آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتے ہیں، عمران خان صاحب کی کچھ جو ہیں پرابلمز بڑھیں گی، یا واقعی یہ غلط چیزوں کے اندر انوالو تھے اور ملٹری جو ہے ایک مثال قائم کرنا چاہتی ہے، ان تمام سوالوں کے جواب ایک فالو اپ ہم پروگرام کریں گے، اس کے اندر ہم آپ سے بات کریں گے. لیکن اس وقت جو ہے کہ یہ جو ہماری رپورٹ تھی اسپیشل رپورٹ، یہ اب جو ہے ہمارے اینڈ پہ پہنچتی ہے، اور جیسے جیسے ٹائم گزرے گا ویسے ویسے جو نئی ڈیولپمنٹس آئیں گی وہ ویسے ویسے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تو اب پتا چلے گا. لیکن ہمارا کوشچن وہی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ یہ کر رہی ہے، تو اس سے پہلے انہوں نے پی 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 کے ساتھ بھی یہ کیا کیوں کیا، انہوں نے یہ پی ایم ایل این کے ساتھ کیا کیوں کیا، انہوں نے ایم کیو ایم کو کریئٹ کیا اور پھر اس کے بھی دیوار کے ساتھ لگایا کیوں کیا. اور اگر جنرل فیض حمید کو آپ کھینچ رہے ہیں تو کیا آپ کو جنرل قمر باجوہ کو اس طرح سیف پیسج دینا چاہیے تھا، کیا ان کو بلا کے بھی آپ کو پوچھنا نہیں چاہیے تھا. اس کے اندر بہت بڑی سیکھ جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی ہے کہ آپ کے اپنے خود کے جتنے مرضی جھگڑے ہوں، آپ ہمیشہ یونائٹڈ رہیں اور کبھی یہ موقع نہ دیں کہ ملٹری جو ہے آپ کی سویلین گورنمنٹ رن کرے، کیونکہ جب جب آپ ملٹری کی گود میں جا کے بیٹھیں گے وہ کسی نہ ایک پارٹی کا فائدہ اٹھائے گی، باقیوں کو بیش کرے گی، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا جو کہ 75 ایئر سے چل رہا ہے، جس کی کہ مثال قائم کی تھی جنرل ایوب خان صاحب نے جب انہوں نے فاطمہ جناح صاحبہ کو ڈیفیٹ کیا تھا الیجڈلی رانگلی۔ تو یہ ہم آپ کے پاس جی آج کی یہ ہماری پہلی رپورٹ تھی، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم اور بھی لائیں گے آپ کے پاس۔
جی بالکل، تمام سامعین اور ناظرین جو میں یہ آواز ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں آپ نے رپورٹ سماعت فرمائی۔ یہاں ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے پھر جڑیں گے ہم 8:15 بجے تک آپ کا اور ہمارا یہ سلسلہ ایسے ہی جاری اور ساری رہے گا۔ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو 4166201778 ہمارا نمبر ہے، اور اگر آپ کہیں ایسی جگہ گزر رہے ہیں جہاں آپ کو ریڈیو سننے میں پرابلم آ رہی ہے تو آپ ایک نمبر ڈائل کر سکتے ہیں 6478724900 6478724900۔ جناب جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں یونیورسل پروموشن جو ہے لے کر آ رہا ہے ہانڈی ملٹن حلال فوڈ فیسٹیول، یہ کمنگ سیٹرڈے ہونے جا رہا ہے 17 اگست کو ملٹن میں، اور یہ ہے ملٹن اسپورٹس کمپلیکس یعنی جو کمیونٹی ہے ملٹن اسپورٹس کمیونٹی میں۔ کیفی خلیل جو ہیں وہ لائیو پرفارمنس دیں گے ہانڈی ملٹن حلال فوڈ فیسٹیول میں، جسے یونیورسل پروموشن مسٹر عامر شمسی جو ہیں وہ آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں۔ یہ فری ایونٹ ہے، اس کی فری پارکنگ ہے، اور اگر آپ کو اسپانسرشپ یا کوئی اسٹال بک کرانا چاہتے ہیں تو آپ عامر شمسی کو کال کر سکتے ہیں یا ان کو ٹیکسٹ کر سکتے ہیں 4166627861 4166627861، یا آپ سارا کو کال کر سکتے ہیں 6478217861 6478217861 ان کا نمبر ہے۔ چلیں جناب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد پروگرام میں واپس آتے ہیں۔ ہمارا نمبر 4166201778۔
4166508000 سٹریس چاہے لاکھ ہو یا کاکدہ، اس زندگی مشکل کر دیتا ہے۔ ماں کی باتیں ایک طرف، آپ کے فائنینشیل سٹریس کا حل ہے شہناز شفیق، جن کے پاس ہیں ملینز آف ڈالرز کے پرائیویٹ فنڈز۔ لاسٹ منٹ کلوزنگز ہوں یا ڈیفیکلٹیز، سبھی کے لیے شہناز شفیق 4165028000 لائسنس نمبر 10845 انڈیپینڈنٹلی اونڈ اینڈ آپریٹڈ۔
دانتوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو یا کرانی ہو ڈینٹل کلیننگ، ڈاکٹر فیاض اینڈ ایسوسیٹس آپ کی پہلی چوائس۔ پیراڈونٹکس، آرتھوڈونٹکس، ڈینٹل امپلانٹ، کاسمیٹک ڈینٹسٹری اینڈ مچ مور۔ وارم اینڈ فرینڈلی ایٹموسفیئر جہاں آپ اپنی زبان میں اپنی تکلیف بیان کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ڈینٹل انشورنس ہے یا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسکاربرو میں ایک اور مسیساگا کی دو لوکیشنز پر آپ کو سرو کرتے ہیں۔ اپوائنٹمنٹ کے لیے ابھی کال کیجیے 9052325678 مسز ساگا 4167579999 اسکاربرو۔
Milton, we are back, this time with Pakistan sensation Kaifi Khalil. 3rd annual Handi Milton Halal Food Festival, Saturday, August 17th, from 12 p.m. to 10 p.m. Milton Community Sports Park, 805 Santa Maria Boulevard. Free admission, free parking. For details, call Amir Shamsi, 416-662-7861 and Sara, 647-821-7861.
ویلکم بیک تمام سامعین کو جو 770 AM ڈائل پر پروگرام سن رہے ہیں ساز و آواز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد۔ جناب 8:15 بجے تک ہمارا اور آپ کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ جناب آپ کو بتا رہے ہیں کہ یونیورسل پروموشن لے کر آ رہا ہے آپ کے لیے ہانڈی ملٹن حلال فوڈ فیسٹیول، یہ کمنگ سیٹرڈے ہونے جا رہا ہے 17 اگست کو، اور کیفی خلیل جو ہیں وہ لائیو پرفارمنس دیں گے۔ جناب کیا بات ہے، کنا یاری او ہو کہانی سنو، کیا بات ہے جناب۔ تو یہ لائیو پرفارمنس ہوگی، یہ فری ایڈمیشن ہے، فری پارکنگ ہے، اور یونیورسل پروموشن کے عامر شمسی اس وقت جو ہیں میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسی تیاری چل رہی، کیا رنگا رنگ تقریب لے کر آ رہے ہیں۔ السلام علیکم عامر بھائی، کیسے ہیں آپ؟
وعلیکم السلام عامر بھائی، کیا حال ہے آپ کی اور سب 770 سننے والوں کو میرا سلام۔
وعلیکم السلام جی جناب، کیا یہ ہانڈی ملٹن حلال فوڈ فیسٹیول آپ لے کر آ رہے ہیں یونیورسل پروموشن؟
بات یہ عامر بھائی، ماشاء اللہ کو پتا کہ ہم 11 سال سے کر رہے ہیں مساگا حلال فوڈ فیسٹیول، اور اس سال بھی ہانڈی وزر اسپانسر، اور بہت شاندار رہا، آپ بھی ہم مجھ سے بہت 2 دن کا ہنگامہ رہا، तो अब 3 साल पहले हमने शुरू किया था ये मिल्टन के अंदर हलाल फूड फेस्टिवल, और माशाल्लाह अल्लाह की हुक्म से, माँ की दुआओं से बड़ा शानदार रहा। और हमारा 3रा साल है हांडी मिल्टन हलाल फूड फेस्टिवल का, क्योंकि 17 अगस्त को होने जा रहा है 605 सांता मारिया बुलेवार्ड।
बिल्कुल, ये जो मिल्टन कम्युनिटी स्पोर्ट्स पार्क जिसको भी कहते हैं, ये सेम ही एड्रेस है?
बिल्कुल यही एड्रेस है जो डेयरी और सांता मारिया के ऊपर है। और वो पार्क आपने देखा, आपने तो क्रिकेट भी खेली हो।
बिल्कुल जनाब, क्या जबरदस्त पार्क है,
बहुत शानदार,
क्या यादें आपने याद दिला दी
जिसके अंदर आपने बड़े चक्के चौके मारे थे। तो वहां पर ये पार्क है, पार्किंग बेंच यहाँ मौजूद है, हर फैसिलिटी वहाँ मौजूद है। और सबसे मजेदार बात यह है आमिर भाई कि ये चारों तरफ से खूबसूरत हरियाली से घिरा हुआ है, तो आपको ना किसी फूड फेस्टिवल को मजा आएगा बल्कि एक जो होती है ना सीनरी व्यू वो भी मिलेगा इंशाल्लाह आपको।
बिल्कुल, तो ये बताइए यहाँ कोई एडमिशन है या कोई पार्किंग की फीस है?
अमर भाई, आप इतना अरसे से प्रमोट कर रहे हैं फूड फेस्टिवल को, अब ये सवाल करके तो
मैंने कहा कि देखें बहुत सारे लोग नए ऐसे जुड़ेंगे जिनको कोई किसी किस्म का कोई गुमान ना रहे ना कि भाई एडमिशन फ्री है पार्किंग फ्री नहीं है, या कोई पार्किंग फ्री है तो एडमिशन फ्री नहीं है।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू अवर स्पॉन्सर्स एंड हमारे जो सपोर्टर्स हैं, जो स्टॉल वाले हैं, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे फ्री शो करना आसान नहीं होता आमिर भाई, आप तो समझते हैं आप वीडियो में बैठे हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी सपोर्ट के साथ हम ये शो कर पाते हैं। और इसके अंदर फ्री एडमिशन है, फ्री पार्किंग है, हालांकि बड़ा लोग मुझे कहते हैं इसमें टिकट लगा दो, मगर मैं कहा नहीं भाई, एक कम्युनिटी इवेंट ऐसा होना चाहिए साल में एक दो बार जिसके अंदर कोई टिकट ना हो। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अगेन आई थैंक यू टू हांडी फॉर दैट वन, और जितने हमारे स्पॉन्सर्स हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया इसके अंदर। तो इट विल बी, हालांकि कैफी खलील जैसे आर्टिस्ट को लेके आना फॉर फ्री एडमिशन इज वेरी हार्ड, यू नो, कौंसिल कराऊं 2000 लोगों का तो वी कैन सेल टिकट इजीली। लेकिन हमने फिर भी कहा कि 770 के सामने इन टोरंटो में रहने वाले, मिसागा में रहने वाले, ब्रैम्पटन में रहने वाले, मिल्टन में रहने वाले, और मेरे नजदीक कैफी खलील जैसा सिंगर मिल्टन शहर में इस तरह तो पहली बार आ रहे हैं कि इतना बड़ा कॉन्सर्ट होने जा रहा है वहां पर, इतना बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है आमिर भाई, जिसकी टिकट कोई नहीं है, जिसकी एडमिशन भी फ्री है और पार्किंग भी फ्री है।
बिल्कुल जनाब, ये यूनिवर्सल प्रमोशन आमिर शमसी, ये प्रोडक्शन है, ये मेला लेकर आ रहे हैं हांडी मिल्टन हलाल फूड फेस्टिवल, और ये होने जा रहा है मिल्टन कम्युनिटी स्पोर्ट्स पार्क में, 805 सांता मारिया बुलेवार्ड मिल्टन में, कमिंग सैटरडे 17 अगस्त को। और इसकी कोई टिकट नहीं है और इसकी पार्किंग भी जो है वहां फ्री है। तो आप सब अपनी फैमिली के साथ मिल्टन वालों तो जरूर पहुंचो, लेकिन जीटीए में जितने लोग भी ये आवाज और आगे भी सुन रहे हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक जरूर जो है इस प्रोग्राम में पहुंचे, जहां कैफी खलील, मतलब सोचिए लाइव परफॉर्मेंस कैफी खलील साहब, फ्री इवेंट, वाओ, मजा जबरदस्त जनाब।
आपकी अपनी बड़ी फॉलोइंग है, आपने भी अपने सारे दोस्तों को और दोस्तों को बताना है, और जितने भी इसको सुन रहे हैं हमारे, मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि हम आपसे टिकट भी ले रहे हैं, पार्किंग भी फिर अच्छी हुई है, लेकिन ये रिक्वेस्ट जरूर है आमिर भाई कि जो जो सुन रहा है, जहां जहां आवाज आ रही है 770 की, वो अपने दोस्तों को, फैमिलीज को बताए कि 17 अगस्त को पहुंचना है 805 सांता मारिया बुलेवार्ड मिल्टन के अंदर। और आमिर भाई, कैफी से पहले 3 से 4 बड़े शानदार प्रोग्राम है जिसके अंदर बहुत सारे सिंगर भी परफॉर्म कर रहे हैं,
जबरदस्त
डांस परफॉर्मेंसेज हैं,
क्या बात
है, टर्किश डांस है, और हमारा मशहूर जो होता है हर दफा का फूड कॉन्टेस्ट, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फूड कॉन्टेस्ट होंगे, उसमें इनाम दिए जाएंगे। उसके अलावा बच्चों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम है स्टेज के ऊपर, तो मैं समझता हूँ एक फन फील्ड इवेंट है। और बच्चों के लिए हमने किड जोन बनाया है वहां, बड़ा शानदार किस्म का, बच्चे वहां के अपना खेल सकते हैं। और ये सब होने जा रहा है सैटरडे को, अगस्त 17 को, दोपहर 12 से लेकर रात 10 बजे तक ये पूरा दिन का हंगामा है। उम्मीद करता हूँ कि हर साल की तरह मिल्टन वाले भी और जीटीए के अराउंड जहां आवाज आ रही है हमारी, उसमें सपोर्ट करेंगे और वहां पहुंचेंगे।
बिल्कुल, और जैसे आपने मुझसे कहा था ना कि यार ये हलाल फूड जो है वो फ्री पार्किंग और फ्री एडमिशन, अब जो है वो लोगों को तो याद ही हो गया हुआ। तो जनाब जो अब आपने बताया ना कि इसके अलावा भी है, तो अगर कोई इवेंट अंडर बैनर हो रहा है यूनिवर्सल प्रमोशन और आमिर शमसी, तो आप समझ सकते होंगे वहां एंटरटेनमेंट के आपके पास कितने मौके होंगे। ये भी बताने की जरूरत नहीं है लोगों को, ये कहते हैं ना ट्रायल एंड टेस्टेड है कि जब यूनिवर्सल प्रमोशन का नाम आए, जब आमिर शमसी का नाम आए, तो फिर एंटरटेनमेंट और फूड मिलेगा ही मिलेगा। क्यों सर?
थैंक यू आमिर भाई। और आपको ऐसे एक और चीज भी है, जब यूनिवर्सल प्रमोशन का नाम आता है, आमिर शमसी का नाम आता है, और फेस्टिवल्स का जो मेरा 10-11 साल से कर रहा हूँ, एक नाम बड़ा साथ जुड़ा हुआ, वो है साजो आवाज 770।
बिल्कुल जी,
आपको पता है कि आरफा बाजी, आपकी पूरी टीम, माजिद भाई, आप हो गए, शादिया हो गए, निशान हो गया, Everybody in the 770 has been a great support to it. उसकी मिसाल पिछला हलाल फूड फेस्टिवल है,
yes.
क्या शानदार हुआ है मिसाल के अंदर. तो मैं आप सबका बड़ा मशहूर हूँ और आमिर ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि मैं थोड़ा लेट पहुंचा क्योंकि आई वाज बिजी विद द क्रिकेट. G20 माशाल्लाह बड़ा शानदार हुआ, कल टोरंटो जीत भी गया,
yes.
माशाल्लाह टोरंटो ने कप भी ले लिया. तो मैं जहां बिजी रहा तो आपसे मुझे उसको कह देना चाहिए था एक हफ्ते पहले, लेकिन मैंने कहा लेट. अब ये 770 के कंधों पे अगले 4 दिन तक
और आपको पता है फिर 770 में जब ये बात हो गई, ये तो फिर यूनिवर्सल प्रमोशन और 770 वो कहते हैं ना ये एक ही जो है वो जान है, यानी
बिल्कुल बिल्कुल
उस पर कोई परवाह नहीं.
सुबह कहती है 8 बजे कहती है तू हमेशा बिना ये करता है आखिर भाई जी, क्योंकि यकीन होता है कि जो लोग काम 7 दिन में करते हो आप 5 दिन में कर लेते
हैं. इंशाल्लाह इंशाल्लाह जनाब,
इंशाल्लाह इंशाल्लाह होगा. कल आप सब तो मुलाकात रहेगी अगले 4 दिन तक, कैफी भी पहुंचने वाले हैं कल परसों, कोशिश करूंगा कैफी साहब को भी ला सकूं मैं राइट, और इंशाल्लाह वो भी आएंगे तो बड़ा शानदार हंगामा रहेगा. लेकिन आमिर भाई आपके और साजो आवाज के आरफा भाजी आप सब कंधों पर ये बोझ है. शाजिया को मेरा पैगाम दे दीजिएगा कि जब बात करे वो न्यूज की तो ये न्यूज जरूर शेयर कर ले.
नहीं जनाब बिल्कुल यही चल रहा है इस वक्त
17 अगस्त.
बिल्कुल जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आमिर शमसी. और जनाब आमिर शमसी ने यूनिवर्सल प्रमोशन के कैफी खलील को लेकर आ रहे हैं 17 अगस्त को, यानी कमिंग सैटरडे को ये आपके शहर मिल्टन में हांडी मिल्टन हलाल फूड फेस्टिवल होने जा रहा है. फ्री एडमिशन और इसकी बिल्कुल ही फ्री पार्किंग है, तो आपने पूरी फैमिली के साथ पहुंचना है 805 सांता मारिया बुलेवार्ड मिल्टन. और अगर आपने कोई स्पॉन्सरशिप या कोई स्टॉल बुक कराना है तो आमिर शमसी का नंबर 4166627861 4166627861. और इसके अलावा सारा को भी आप कॉल कर सकते हो, यूजुअली शमसी जो है वो फोन नहीं उठाएंगे, उनको टेक्स्ट कर दें, तो आप सारा को जरूर कॉल कर लें 6478217861 6478217861 सारा का नंबर है. कैफी खलील आपके शहर मिल्टन में आ रहे हैं. चले जनाब शाजिया जी को भी जो है वो खींची खींची हंसी उनकी आ रही थी और उनको प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं. अभी हमारे पास है अच्छा खासा टाइम और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 4166001778. जी शाजिया जी, आज सारा दिन खबरें जो हैं
हाँ।
वो सुबह जब आंख खुली और जाहिर पाकिस्तान में तो शाम का रात का टाइम
हाँ,
हो गया था और ये न्यूज ब्रेक हो गई थी
हाँ।
जिस तरीके से हो गया. अच्छा आपने देखा होगा जो सैटरडे भी जो है कुछ इमरान खान के कुछ ऐसे बयानात आ गए थे जिस पर उन्होंने एक तो जो बांग्लादेश वाले पर उन्होंने बात की वो थोड़ा सा काफी वायरल हो रही थी चीजें. फिर मैं कुछ टिकर्स ये भी देख रहा था कि इमरान खान की ये भी वो कहते ना उनके बाइट्स जो चल हेडलाइंस चल रही थी कि जनाब कुछ बड़ा होने वाला है कुछ बड़ा होने वाला है. तो ये बड़ा होने वाला क्या ये वही था जो आज मंडे को जो है वो टोरंटो टाइम्स सुबह जो है वो हमें सुनने को मिला कि एक हाई रैंक आईएसआई ऑफिसर्स को जो है कि जिस तरीके से अरेस्ट करके उनके ऊपर जो है वो कोर्ट मार्शल चलाया जा रहा है. तो क्या ये सब चीजें आपकी नजर में आगे दिख रही हैं? आपको लगता है कि कुछ चीजें फेवर ऑफ इमरान खान जाएंगी या आप कहेंगे और इन चीजों को जो है
में तो पता है क्या बात है ये शायद उसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है. मुझे तो ऐसे ही लगता है ये शायद इमरान खान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आएगा क्योंकि वो कहते हैं ना हम तो डूबे हैं तुमको भी लेकर डूबेंगे सनम है ना. तो जनरल बाजवा और उनके साथ कोई जो और लोग थे जिनके बारे में अभी तक पता नहीं है तो उन सारों के भी नाम आएंगे और ये बहुत बड़ी फिर कॉन्स्परेसी सामने आएगी. तो फिर मिलिट्री से लोग फिर पूछेंगे एक दफा कि भाईजान फैज हमीद को आपने पकड़ लिया कोर्ट मार्शल किया अब जनरल बाजवा को आप ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो. बाकी ये जिनके नाम आ रहे हैं जिनके के नाम ले रहे थे अकबर साहब ले रहे थे अपने इसके अंदर कि ये जो हैं इनको भी क्या आप पकड़ोगे क्या इनके ऊपर भी ऐसे ही मुकदमे चलेंगे कोर्ट मार्शल होगी क्या चक्कर है. तो ये बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स वैसे खुलेगा. ये
देखिये बहुत टाइम से ये इन बातों पर वो चर्चा हो रहा था खबरें भी बन रही थी कि इस वक्त आर्मी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था और ये कहा जा रहा था कि एक वन साइडेड जो है वो चीजें हो रही हैं सब कुछ हो रही हैं. लेकिन हमेशा ये कहा गया कि हम अपना क्योंकि देखें आर्मी एक मेरे हिसाब से मे बी आई एम रॉन्ग कि वाहिद अभी एक डिसिप्लिन अदारा है जहां अभी भी डिसिप्लिन है यानी ऊपर से लेकर नीचे ऑर्डर फॉलो होते हैं.
ब्यूरोक्रेसी में भी है ऐसा नहीं है कि खाली
वहां भी होंगे वहां भी होंगे
अभी क्योंकि ये सारे वो डिपार्टमेंट्स हैं जो गोरा सेट करके गया है ना. ये पुलिस जो है उसमें बेशक करप्शन आ गई है बेशक करप्शन लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है पुलिस का वो गोरा सेट करके गया है. मिलिट्री का बेसिक स्ट्रक्चर गोरा सेट करके गया है. ब्यूरोक्रेसी का जो बेसिक जो सेटअप है वो सिविलियन गवर्नमेंट का भी वो सेटअप करके गए थे। वो दूसरी बात है कि सिविलियन गवर्नमेंट जो है रो रो के पीट पीट के फिर मिलिट्री के पास जाती है, फिर उनको वापस बुलाती है, फिर उनको कहती है भैन सारी हेल्प करो, भैन सानू जरा पावर बिच लैके आओ, तो वो रो रो कहते। तो ये सिस्टम तो सारे वो सेट करके गए हुए हैं गोरे जो हैं।
बिल्कुल।
तो ये डिसिप्लिन आपको ब्यूरोक्रेसी में भी नजर आएंगे।
सही।
लेकिन जिस तरह यहां पे भी चीजें ऊपर नीचे होती हैं, जाहिर है कि पूरा कंट्री रिफ्लेक्शन होता है ना, अपने इंस्टीट्यूशन उसका रिफ्लेक्शन होते हैं ना कंट्री का, तो जैसे वहां पे आपको चीजें ऊपर नीचे नजर आएंगी, यहां पे भी आएंगी। अब देखे ना ये फैज हमीद साहब जो हैं, उनको जो है उनके साथ और भी दो जो थे जनरल शमशाद से जैसे और लोग थे, वो भी बड़े सीनियर थे, इनको सुपरसीड करके लाया गया। इसी तरह जियाउल हक जो थे उनको बहुत सारे जो सीनियर जनरल थे उनके ऊपर सुपरसीड करके लाया गया। अयूब खान साहब के बारे में तो जिना साहब ने कहा था कि ये लड़का इंतहाई एम्बिशियस है, इसको इमीडिएटली वो जिसको हमारी आम जुबान में कहते हैं ना खुडे लाइन लगाना, इसको खुडे लाइन लगाओ। लेकिन देखें आपने उनकी सुनी नहीं, आप वो करते रहे, फिर जी वो जो है पाकिस्तान के जो है वो प्रेसिडेंट बन गए, फातिमा जिना साहिबा को उन्होंने अलेजली हराया, और हराया अलेजली क्या, हराया ही उनके। और आप देखें जरा कि कितना गलत मिलिट्री ने उस वक्त नैरेटिव क्रिएट किया। उनके साथ खड़ा हुआ कौन था आपको पता है? फातिमा जिना के साथ कौन खड़ा हुआ था? फातिमा जिना के साथ खड़ा हुआ था मुजीबुर रहमान, जब ये सारे उनके अगेंस्ट हो गए थे। भुट्टो साहब पता है क्या कहते थे फातिमा जिना को? ये बुड्ढी जो है ये शादी क्यों नहीं करती, ये बुड्ढी ऐसे क्यों नहीं करती। ये तो हमारे मुल्क में लोग लैंग्वेज बोलना शुरू हो गए थे इस गंदे माहौल के अंदर। बंगाली जो थे ना,
पे था नहीं तो मुझे आइडिया
नहीं,
नहीं लेकिन इस तरह के अल्फाज कहीं कहीं मुझे नहीं लगता कि भुट्टो साहब ने किया।
भुट्टो साहब ने ये कहा है, ये बड़े ये
मुझे लगता है कहीं ना कहीं मीडिया और
ये उन्होंने कहा भुट्टो साहब को। आप सारे आपकी क्योंकि बड़ी हमदर्दी है भुट्टो साहब के साथ, आप सारों की मुझे पता है, तो आप उनको बड़ा डिफेंड करने की कोशिश करते हैं,
किसी को डिफेंड नहीं करते।
तो वो जो है वो इस तरह, तो हमारे मुल्क में तो जो ये वाला हमारा हिस्सा जो अब है ये बंगाल में इस तरह की लैंग्वेज नहीं यूज करते थे। जो बांग्लादेश अभी बन गया है ना, वहां पे लोग जो थे वो फातिमा जिना के बिल्कुल साथ खड़े रहते थे।
बिल्कुल।
और आप देखें कि मुस्लिम लीग बनाई भी किसने थी, मुस्लिम लीग भी, लेकिन हमें क्या पढ़ाया गया था व्हेन वी वर ग्रोइंग अप? हमें पढ़ाया गया ओ जी मुजीबुर रहमान तो बड़ा गद्दार था, और मुजीबुर रहमान ने जो है ये किया। मुजीबुर रहमान ने कुछ नहीं किया, ही फॉट।
अच्छा, मैंने जो माशियत उलूम जिसको कह लेना कि जो पढ़ी उसमें तो कहीं नहीं लिखा था कि मुजीब साहब जो है वो गद्दार है।
हाँ, नहीं नहीं, हमें तो उस्ताद बड़ा ऑनेस्टली बड़ा ओपनली कहते होते थे कि जिस वक्त नहीं 1971 की वॉर का जब भी आता था तो जी मुजीबुर रहमान गद्दार निकला और उसने ये किया। एक आपने मुल्क में इलेक्शन कराए, देखो ना एक सिंपल बात है, कैनेडा में आपने इलेक्शन कराए, ठीक है, उसमें दो पार्टी,
बिल्कुल,
एक लिबरल पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है। लिबरल पार्टी जो है वो बिल्कुल क्लियरली जीत के आ जाती है, और आप कहते हैं नहीं लिबरल पार्टी को तो हम ये देंगे ही नहीं गवर्नमेंट, क्योंकि हम चाहते हैं कि कंजर्वेटिव रन करें। ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता। क्लियर मेजोरिटी जो उस वक्त थी मुजीबुर रहमान की थी, मुजीबुर रहमान साहब जीते हुए थे, और जो यहया खान साहब थे तुम मुल्क के इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव हो भाई, तुम बात करो ना मुजीबुर रहमान के साथ। उसका एक 6 पॉइंट एजेंडा था, वो कहता था ये चीजें, इसमें कि वो वेलफेयर मांगता था उसके लिए। भुट्टो साहब जो है वो भाग भाग के उनके साथ गुफ्तगू के लिए भाई, भुट्टो साहब को तुम बोलो एज अ हेड ऑफ द कंट्री कि तुम ऑपोजिशन में बैठो भाई,
बिल्कुल ठीक,
यू हैव लॉस्ट द इलेक्शन, यू सिट इन द ऑपोजिशन, राइट,
एग्री 100% जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही
हैं। फिर उसके बाद मिलिट्री ने उसको मारा, उनको खत्म किया अपने लोगों को, मतलब हाउ कैन यू डू दिस, राइट।
बात वही है कि किसको मारा, इस पर भी बात हो जाती है। लेकिन देखें अगर आप वैसे उस वक्त का पाकिस्तान, जब पाकिस्तान आजाद हुआ, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, क्या आपको लगता था उस वक्त के नक्शे को देखे कि प्रैक्टिकली ये A1 यूनिट रन हो जाएंगे ऐसे? अभी छोड़ दें क्या पाकिस्तान हुआ क्या हुआ, आप वैसे एक जनरल थॉट बात कर रहा हूं।
अच्छा, अब ये भी तो कॉन्स्पिरेसी डेवलप कर रही है ना,
एक तरफ पाकिस्तान मतलब आप कह रहे हैं कि मगरबी पाकिस्तान है, बीच में एक इतना बड़ा आजाद मुल्क जो हो गया जिसको जो है इंडिया का नाम दिया गया, ठीक है, उसके साथ एक और छोटा सा जो है वो टुकड़ा, वो कहते हैं यार ये भी पाकिस्तान है। आप प्रैक्टिकली मुझे बताएं दुनिया में कोई ऐसा कोई है अब तक ऐसी कोई मिसाल कुछ चल रही है, मुझे तो नहीं याद, मेरी शायद इन्फॉर्मेशन कम हो, जो इस तरीके से एक रिमोटली दूर आपके मुल्क का पार्ट,
आपका
नहीं,
पानी के थ्रू आपका
नहीं, बात नहीं समझ कि एक एग्जांपल लेते हैं कि चले कनाडा की बात करते हैं,
ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ना,
नहीं सुनते हैं, एक सिनेरियो बनाते हैं, अभी कनाडा का एक पार्ट है, बीच में जो है वो मैक्सिको आ जाए, नहीं मैक्सिको, नो 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 नो, दरिया वरिया अभी कोई दरिया की बात नहीं हुई, बीच में आप मैक्सिको को डालें या अमरीका को डालें, और उसके बाद क्यूबेक को डाल दें।
लेकिन आपका लैंड रूट तो कहीं से तो मिल रहा है ना, आप उसको मिल रहे
हैं। बात तो लैंड नहीं इस, हाँ। मुझे बताएं हाँ। कोई ऐसी इस सिनेरियो के अलावा हाँ। दुनिया में कोई ऐसा कुछ है एग्जांपल हाँ, हमारे
आप,
पास
अगर नक्शा देखेंगे
कितने
ना?
मुल्क ऐसे हैं कि जिनका एक पार्ट जो है वो दूसरे मुल्क को क्रॉस करके आता है।
ये आप जब मुल्कों के नक्शे आप देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एक पतली सी पगडंडी सी जा रही है जो कि एक हिस्से को दूसरे मुल्क के साथ जो है
वो समंदर ही है।
हाँ, हाँ।
मैं जमीन की बात कर रहा
हूं। ये पगडंडियां जो है
नक्शे ना जमीन पे नक्शे के हिसाब से कैलकुलेट होते हैं।
बिल्कुल,
तो जमीनी तो रास्ता आपका वहां है ही नहीं।
जमीनी है कि नहीं है आपका मुल्क? ज्वाइंट तो है ना।
कैसे
तो है ना?
ज्वाइंट नहीं है।
नहीं ज्वाइंट है आपका मुल्क, आपके मुल्क के कुछ समंदर जो है वो ज्वाइन कर रहा है ना।
मैं कोई बात कर रहा हूँ।
लैंड है कि नहीं है? लैंड का कुछ मसला नहीं है, लैंड का कुछ मसला नहीं है।
अगर मेरे हिसाब से लैंड इज द फर्स्ट ऑप्शन, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है।
मुझे नहीं
आपके ये देखे फर्ज कर ले, कनाडा है ना वो पूरा एक लैंड मिला हुआ है, ठीक है? ये एक मुल्क है। मैंने एग्जाम्पल दी ना कि इसको बीच से काटें, उसमें अमेरिका डालें, उसमें मेक्सिको डालें, अलग कर दें, और उसके बाद बोलो जी आप समंदर के से रास्ते से ना सिर्फ क्यूबेक जा सकते हैं।
तो वो देखना पड़ेगा ना कि आपकी कनेक्टिविटी कैसे है। जरूरी नहीं है कि
कनेक्टिविटी थी नहीं ना,
जरूरी नहीं है ना कि लैंड से
सिर्फ समंदर की होगी ना फिर। मतलब बचता अगर आप देखें एयर के थ्रू जाएंगे या आप जो है उस तरीके से जाएं। और फिर आप देखें दूसरा कि एक जब बीच में कोई चीज कोई और मुल्क आ जाता है ना, तो आपका कम्युनिकेशन आपके 10 मसाइल जनरेट
नहीं,
हो जाते
नहीं,
हैं।
नहीं, कोई 10 मसाइल
वो प्रैक्टिकली रन करना
आपने,
मुझे लगता था कि
आपने सारी की सारी नो ये बंगालियों के साथ नफरत करते थे।
नफरत थी
उनको ये काला कहते थे, उनको ये बुरा भला कहते थे, उनको कहते थे इनकी टांगे टेढ़ी हैं, इनको मिलिट्री के अंदर कमीशन नहीं देना है। अमर आपने नहीं सुनी है ना बातें?
सही कह रही है, आप सही कह रही है, मैं इस पे नहीं कह रहा।
हाँ,
आपकी बातें
आपने ये नहीं सुनी है ना बातें, तो इसमें
बात
पता नहीं है। खुद जो मिलिट्री वाले थे ना उस जमाने में, वो ये कहते थे कि हमने, और उसमें सबसे ज्यादा किरदार, मैं खुद भी पंजाबी हूँ, ये जो पंजाबी अलीट था उसका ये गंदा जो था वो हमेशा कहते थे इन बंगालियों से जान छुड़ाओ, ये इनको आने मत दो, इनको ये ना करो। भाई आप अपनी ही कौम के एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से इतनी नफरत कैसे खाएंगे, कैसे? जबकि आपके मुल्क को बनाने वाले ही बंगाली थे। मुस्लिम लीग किसने? मुस्लिम लीग
किसने? मेरा मानना ये है कि देखिए उस वक्त कोई भी था, चाहे बंगाली था, सिंधी था, पठान था, बलोच था या पंजाबी था,
लेकिन बंगालियों ने पैसा दिया उसके
वो
लिए।
सब पाकिस्तान के लिए ही तहरीक चला रहे थे।
हाँ, लेकिन मुस्लिम लीग किसने बनाई?
उतने ही मुहिब्बे वतन थे जितना आज कोई पंजाबी है या उर्दू स्पीकिंग है, कोई भी बंगाली भी उतने ही मुहिब्बे वतन थे।
तो मुजीबुर रहमान जब इलेक्शन जीता तो उसने 6 पॉइंट एजेंडा अपना दिया था ना, और उसने कहा था कि वेलफेयर आप वहां पर लेकर आए, वही सुविधाएं जो कि आप इस हिस्से को दे रहे हैं वही आप हमको भी दें, हमको भी दें। ये दिस इज एग्जैक्टली द सेम स्टोरी जो कि इस वक्त बलूचिस्तान में चल रही है, कि बलूचिस्तान के रिसोर्सेज जो हैं आप यूज कर रहे हैं, लेकिन आप बलूचिस्तान को वो तमाम सुविधाएं नहीं दे रहे हैं जो उनको चाहिए। बंगालियों का एग्जैक्टली यही था कि आप हमारा ये जूट, हमारे रिसोर्सेज तो आप जूट करते हैं, यूज करते हैं, लेकिन हमको वो
लेकिन
जो
डिसएडवांटेज हुआ ना, जिसकी वजह आप जैसे कह रहे हैं डिसएडवांटेज जो मेरी नजर में है बंगालियों के साथ जो बांग्लादेश बन गया उसमें तो डिसएडवांटेज आपका कनेक्शन ना होने की
वजह ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। नहीं ये कोई रीजन नहीं होता। आपने अगर अपने मुल्क को चलाना होता है तो आप चला ले। अच्छा चलो ठीक है, इस वक्त तो बलूचिस्तान आपके साथ है ना, तो बलूचिस्तान के साथ फिर आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आप ये क्यों
क्या कर रहे हैं?
जो कुछ ना इंसाफियां कर रहे हैं आप उनके साथ,
देखिए
है ना,
होता क्या है कि बहुत सारी चीजें होती हैं। आप सही कह रही हैं, बलूचिस्तान में बहुत सारी ना इंसाफियां हो रही हैं।
हाँ?
लेकिन उसको क्या होता है कि उन ना इंसाफियों को ना ट्रिगर बहुत किया जाता है। अब आप एग्जांपल देते हैं पंजाब, एग्जांपल लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा को ले लेते हैं, ठीक है? खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करें, अभी बलूचिस्तान भी नीचे बाद में जाते हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा में जो डैम के सिलसिले हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे, उन्होंने जो है वो डैम बनने से, उस वक्त आपको याद होगा कि नौशेरा डूब जाएगा, फला डूब जाएगा, डैम नहीं बनने दिया,
कालाबाग डैम
जब मुशर्रफ टाइम में, आपको याद है पाकिस्तान में हर चीज बन गई आपके।
उससे मुशर्रफ ने कहा भी कि ये गलत है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कुछ नहीं डूबेगा, कुछ नहीं डूबेगा,
लेकिन बना
नहीं बना नहीं बना।
तो बात समझ रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं बीच में, इंडिविजुअल लोगों के मफाद आ जाते हैं जिसको वो ट्रिगर कर देते हैं, फायर कर देते हैं।
अब आपने बात की इंडिविजुअल लोगों के मफाद, जिसकी के वजह से मुल्क में गंद पड़ता है,
मुल्क गंद करता है।
हम उन लीडरों के पीछे लगे रहते हैं, हम मुल्क का कभी नहीं सोचते, हम हमेशा लीडरों की जय जयकार करते हैं, उनके आगे हम हाथ जोड़ते हैं और हाथ जोड़, ये जैसे अभी फैज हमीद साहब का भी ये था, इतने ये पावरफुल थे कि ये सारे ब्यूरोक्रेट्स और दूसरे तीसरे हाथ जोड़ के इनके पीछे खड़े रहते थे, बोल नहीं सकते थे, आवाज नहीं थे निकाल सकते, ही वॉज सो पावरफुल। हाँ, तो जब आपके जो हैं आप मिलिट्री वालों को बताएंगे नहीं कि भाईजान आप सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर हो, आप ये कुछ नहीं दिखा सकते और नहीं कर सकते हो, हमने चूंकि कुर्सी, वही अगेन इंडिविजुअल मुफाद, मुझे चूंकि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी चाहिए इसलिए मैं बाकी सारी सियासी जमातों के खिलाफ साजिश करूंगा, मैं मिलिट्री की गोद में जाके बैठूंगा, मैं उनसे फायदा लूंगा, एक्सप्लॉयट करवाऊंगा, सारा इंजीनियर कराऊंगा और फिर मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। जब आपके लीडर इस तरह के होंगे उस वक्त तक आपके मुल्क में गंद चलता रहेगा।
फिर बिल्कुल सही कह रहे हो, फिर आपने बात की थी नीचे नंबर से 2-3 नंबर को लाके डायरेक्ट आ रहे, ये कौन बनाता है? कौन बनाता है? कौन बनाता है?
प्राइम मिनिस्टर साहब
सिविलियन हो गए ना,
सिविलियन। हाँ,
मेरी बात समझ रहे,
तो भैया मैं किसको ब्लेम दे रही हूं? आप, मैं किसको ब्लेम, मैं सिविलियन गवर्नमेंट को ब्लेम।
हमारा प्रॉब्लम यही हो गया है कि देखें, फिर आपने जो बात की ना, भुट्टो साहब भी हो गए जब आए, ठीक है, मुजीब साहब का भी हो गया, बांग्लादेश 71 में अलग हो गया, ठीक है, बांग्लादेश बन गया, यानी कह लें, मुझे बताएं अभी बांग्लादेश बनने के बाद से, 71 के बाद से लेके आज जो हम 2024 में खड़े हुए, ठीक है, अब तो आपने किसी, आपको सियासतदान या आपके ब्यूरोक्रेट, वो हमारे साथ आए थे प्रोग्राम में शब्बर जैदी साहब, उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि कोई स्टैब्लिशमेंट इतनी करप्ट या कुछ नहीं है, ना सियासतदान, उस जितनी करप्ट हमारी जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी है। कहते हैं वहां जितनी ग्रुप बंदी और कहते हैं वहां चौकीदार है ना, वहां का जो जो चपरासी है वो भी अपना एक गैंग चला रहा है,
इसलिए क्योंकि करप्शन के तरीके तो सिखाते हैं आपको ब्यूरोक्रेट्स है ना, ब्यूरोक्रेसी आपको करप्शन के तरीके बताती है ना,
तो आप
कि आपने क्या कहा, कहां से पैसे
मार्क कर देना, दायरा बना देना कि नहीं यार ये सारा कसूर
तो पता ही है सबको,
तो वो पहले बात नहीं करते थे, बातें क्या होती थी कि सियासतदान करप्ट है। देखें हम जितना भी मीडिया में,
ब्यूरोक्रेट्स आर पार्ट ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट, सिविलियन,
हाँ लेकिन दे आर नॉट पॉलिटिशियन ना।
हाँ लेकिन
हम टीवी पे क्या देखते हैं, मैं देखें मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, हम टीवी पर दो सबसे ज्यादा हम ये देखते हैं कि यार सियासतदान वो करप्ट है, यही सुनने को मिलता है सबसे ज्यादा। बहुत इजी होता है क्योंकि वो पब्लिक फिगर होते हैं, वो पब्लिक के वोट से लेके आए हैं, तो बहुत आसान हो जाता है किसी भी, आई रिस्पेक्ट ऑल पॉलिटिशियन, मेरी कोई वो नहीं है कि यार कोई ये अच्छा है या बुरा है, सब ही अपनी जगह अच्छे होंगे, लेकिन क्या उनको ज्यादा अटैक कर दिया जाता है। फिर इसी तरीके से जो है वो आप कहेंगे यार अदलिया जुडिशरी देख लें, वहां कोई बात नहीं करेगा करप्शन की, क्या आपको नहीं लगता कि वहां नहीं होती होंगी
सबसे ज्यादा वहां पे?
फिर आर्मी की बात ही होती है, अच्छा आर्मी का जो है वो ये होता है कि वहां भी करप्शन है,
कोई देखो ना क्या क्या कुछ करके गए हैं।
हाँ वो देख रहे ना, जो डैम के चक्कर में सारा सिलसिला यहाँ बनता रहा,
और फिर वो उसको बनी गाला जो थी वो ग्रीन बेल्ट में आती थी, आपको पता है यहाँ पे इन मुल्कों में कितना ग्रीन बेल्ट पे जोर मचता है, वो सारे का सारा ये जो बड़े बड़े थे इंक्लूडिंग इमरान खान की कोठी है वहां पे सबको, जी साकिब निसार साहब ने कहा नहीं नहीं ये सब ठीक है यहाँ पे लोग घर बना सकते हैं, कोई घर नहीं,
हम उस पर इस पे परसेप्शन ये कोई बात नहीं होती है,
नहीं होती।
जी मैं सारा दिन आप सुबह से शाम तमाम पाकिस्तानी बड़े मेन स्ट्रीम सारे लगा लें, कोई नहीं बात करेगा, आप कुछ बोलने लग गए, फिर बात करें थे आर्मी की भी, अच्छा आर्मी में भी जो है वो कोई नहीं बात करता था, लेकिन अगर आप देखें आर्मी का हमेशा से अपना एक सिस्टम तो रहा है ना, इस पे तो बात करें,
आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन के ऊपर हम एतराज नहीं कर रहे क्योंकि आर्मी का सिपाही आज भी हमारे लिए मुल्क के लिए अपनी जान दे रहा है बॉर्डर के ऊपर, ये दिस इज ओनली द टॉप 3 जनरल्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट,
बिल्कुल दुनिया बात कर रही ना, हम नहीं, इस वक्त तो दुनिया बात कर रही है, लेकिन जो बात नहीं होती है वो ये होती है कि यार ब्यूरोक्रेसी में कितनी करप्शन है, अदालत जो अदलिया है उसमें कितनी करप्शन है, ये सिविलियन अपने, मैं तो कहता हूँ वही बात जो हमने पहले शुरू की कि चंद अफराद अपने मफाद के लिए, उस वक्त भी जब आपने कहा कि यार नंबर 3 पे थे उसको जो है आर्मी चीफ नंबर 1 पे लिया है, फिर नवाज शरीफ, अच्छा आप देखें ना नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि मेरा ज्यादा अवेयरनेस मुशर्रफ टाइम पे क्योंकि उस वक्त इस एज में था जहां चीजें समझ आ रही थी, तो मुझे पहला जो कू समझ आता है जो याद रहा वो याद रहा जब नवाज शरीफ और ये मुशर्रफ साहब वाला हुआ, तो मुशर्रफ साहब को जिस तरीके से प्रमोट करके पोजीशन लाने में भी नवाज शरीफ साहब का ही हाथ था, ठीक है ना, तो आप कहीं ना कहीं, और फिर देखे ना होता क्या गलतियां कहां होती है, हम बहुत पावर के उसमें ना आगे चले, शरद जी मुझे एग्जांपल दें, चले प्राइम मिनिस्टर में बन गए आप जो है वो आर्मी चीफ हैं, अगर मैं आपका जहाज उड़ता हुआ आ रहा हूं, आप अभी आपकी बात करूं, आपका जहाज कहीं से आप ट्रैवल करके आ रही हो और मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर करूं कि यार इसका जहाज ही नहीं उतरने देना है, इसको बोलो कहीं भी चला जाए ये गद्दार है, इसको मैंने फायर कर दिया, ये तरीका होता है?
नहीं ये तरीका नहीं,
दिस इज द वे, नो, आप अपनी गलती तो माने और फिर क्या होता है क्या, अच्छा एक अब फिर आपके पास पावर जो है ना वो इतनी है कि आप एक कॉल पे ना बगैर उतरे आसमान से उतरे आप मुझे छुट्टी करा सकती हैं, तो आप तो पहला एक्शन यही लेंगे यार ये कौन है आमिर अहमद, इसने मतलब इतना भी गवारा नहीं किया कि मुझे उतरने तो देते, मुझे बात कर लेते, कोई मसले का हल, 10 मसले होते हैं, जितनी बड़ी जंगे हल तो टेबल पे ही हुई ना।
और ये भी जो नवाज शरीफ साहब का जो नैरेटिव है, मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि कारगिल की वॉर इसने मेरे
शाजिया जी, मैं 2 दिन से यकीन करें इतना रोना आ रहा था मुझे, मैं 2 दिन से टीवी देख रहा था।
तुम प्राइम मिनिस्टर हो कंट्री के, तुम्हारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैसे शुरू कर सकता है कारगिल की वॉर, तुम्हें मतलब है वो कुछ चूंटियों की लड़ाई है, इंडिया जैसे जिनके साथ लड़ाई करने लगे हैं और उसने प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताया, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं।
फिर मैं तो 2 दिन से आपको देखा अरशद नदीम साहब मेडल लेकर आ गए, पूरी दुनिया में वाह वाह हो रही है, मैं 2 दिन से टीवी पे देख रहा हूँ, इस वक्त हर गवर्नमेंट का बंदा जो है ना वो भी कह रहे हैं कि जी हमने जो है ये काम करा दिया, हमने हमारा अरशद नदीम, हमारा अरशद नदीम, हमारा अरशद नदीम,
तो उसको 75,000 रुपीज का
बेचारा जो है वो जेवलिन लेने के लिए जो है मारा मारा फिर रहा था,
फिर रहा था,
और वो मैं देख रहा था एयरपोर्ट पे क्योंकि बहुत वायरल भी हुआ, और मैं उस वक्त इत्तेफाक से लाइव देख रहा था जब ये सुबह का ही टाइम था जब वो रात पाकिस्तान में वहां लैंड किए टर्किश एयर लाइन से, तो वो एक वीडियो किसी ने डाल के जो है फिर बाद में वायरल भी कर दी, जो कान में जाके राणा मशहूर साहब जो है वो पता नहीं क्या गुजर गुजर कर रहे हैं, और बेचारे का चेहरा आप देखें वो पता नहीं उन्होंने क्या बोला होगा, वो तो अल्लाह ही जानता है, और या तो राणा साहब जानते हैं, राणा मशहूर साहब जानते हैं, या जो है
विच इज वेरी ऑब्वियस, उसको कह रहे थे कि तुमने प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया
नाम लेना है,
नाम लेना है,
मतलब अगर मैं ये
दूसरा जो लड़का था एक दफा जिसने कि वो जीता था मेडल जीता था इससे पहले रेसलिंग में, उसको भी कहते थे ना कि तुमने प्राइम मिनिस्टर का नाम लेना,
तो मुझे बताए ना उस बच्चे को आज उस, अच्छा आज उसके घर गली जो है मोहल्ले की वो पक्की हो रही है, आज उसको जो है वो सब कुछ दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखे ना इंसाफियां जो है ना वो आपके पीछे भागती हैं,
भागती हैं,
छोड़ती नहीं।
और आमिर पता है ये शायद बात लोगों को बुरी लगेगी लेकिन बात ये है कि पता है जैसे हम अब इन कंट्रीज में आए हैं, हम माइनॉरिटी में है ना, लेकिन हमारा गवर्नमेंट्स कितना ख्याल करती हैं, हमने अपनी माइनॉरिटीज का ख्याल नहीं किया,
यहाँ तो मैं कहता हूँ देयर इज नो माइनॉरिटीज, यहाँ वी आर कैनेडियंस,
वी आर कैनेडियंस, हाँ तो हम भी, हमको भी चाहिए जरा अपने माइनॉरिटीज का थोड़ा ख्याल, हमारा देखो ना हम इंडिया को बड़ी बातें बनाते हैं, हमारा इंटीरियर मिनिस्टर क्रिश्चियन क्यों नहीं बन सकता, हमारा ये जो कनाडा का डिफेंस मिनिस्टर अगर सिख बन सकता है, हमारे मुल्क का सिख जो है वो क्यों नहीं डिफेंस मिनिस्टर बन सकता,
बिल्कुल बन सकता,
इंटीरियर मिनिस्टर क्यों नहीं
बिल्कुल बन
सकता, हिंदू है वहां पे सिख है, भाई सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी,
100%
आप देखते हैं ना यहाँ पे जिस वक्त आपके जॉब्स आते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के, उसके नीचे एक जुमला लिखा होता है वी आर एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर,
बिल्कुल
हमारा मुल्क इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर क्यों नहीं है,
शरद जी इसमें अवेयरनेस की बात है, इसमें
माइंड सेट
की बात
है,
माइंड सेट
है, हम मुसलमान बड़ी जी बड़ी टॉप क्लास कोई रेस है दुनिया की, और सिर्फ पाकिस्तान में मुसलमानों ने
पाकिस्तान में नहीं है, मुसलमानों
ने रूल नहीं करना उस मुल्क में, उसमें हिंदुओं ने नहीं रूल करना, सिर्फ मुसलमानों, क्योंकि मुसलमान बड़ी सुपीरियर कौम है, नहीं पाकिस्तानियों की मैं बात कर रही हूँ, जो पाकिस्तान के मुसलमान है दे आर द मोस्ट सुपीरियर इन द वर्ल्ड, बस वही सिर्फ जो है बस पाकिस्तान में रूल कर सकते हैं, कोई हिंदू सिख क्रिश्चियन ऊपर नहीं आ सकता, सो दैट इज अ वेरी
वो खास, अच्छा ये सब ना खास लेवल पर ही है, और यकीन करें आप भी पाकिस्तान रह गई हैं, यहाँ लोग सुन रहे हैं हमें, ये भी सब पाकिस्तान से, जितने भी पाकिस्तानी आए हुए हैं, मैं भी पाकिस्तानी आया
हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट लेवल,
जितने भी नीचे अवाम लेवल पर लोग हैं,
हम तो मिलजुल के रहते हैं ना, हम तो मिलजुल के रहते हैं,
वहाँ हर एक बंदा जो है ना वो उसको कोई परवाह नहीं है कि ये जो है ये हिंदू है, ये सिख है, ये क्रिश्चियन है,
ठीक है,
ये शिया है, ये सुन्नी है,
ये अवाम के लेवल पे ना, मैं वही आपको कह रही हूँ कि हमारा इंटीरियर मिनिस्टर कोई क्रिश्चियन या हिंदू क्यों नहीं बन सकता,
बनना चाहिए अगर
हमारा डिफेंस मिनिस्टर कोई सिख या हिंदू
बनना चाहिए अगर वो कॉम्पिटेंट है,
हाँ हमारे मिनिस्टर्स जो हैं उसमें आटे में नमक के जैसे एक या दो जो हैं वो माइनॉरिटीज के मिनिस्टर्स क्यों हैं भाई, इतनी बड़ी माइनॉरिटी
ज्यादा है,
हाँ इतनी बड़ी माइनॉरिटी वहां पे है, इतना उनका रोल है, पॉजिटिव रोल है, इतनी क्रिश्चियन
पाकिस्तानी है
ना, पाकिस्तानी है ना भाई, वो क्रिश्चियंस का आप रोल देखें एजुकेशन के अंदर कितना बड़ा उनका, हमारा एजुकेशन मिनिस्टर ही चलो आप किसी क्रिश्चियन को,
मैं आपको बात बताऊं ना,
एक अंगूठा छाप पंजाबी जो है उसको फेडरल मिनिस्टर बना दे,
बहुत हुई है वो मिस्टेक्स, कहते हैं मिस्टेक्स कह लें,
सीख नहीं रहे ना, सीख नहीं रहे अभी भी नहीं सीख रहे,
शायद टाइम नहीं मिला, मैं बता रहा हूँ आपको इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन अभी वी आर जस्ट अ बेबी, पाकिस्तान को देखें बहुत सारे आपने देखा होगा,
हमसे तो छोटा बेबी जो है बांग्लादेश है ना, किधर का किधर निकल गया है,
नहीं नहीं वहां भी हालात को अच्छे नहीं है,
नहीं नहीं जीडीपी उनका आप देखो ना,
चंद्र जी देखें वो करप्शन की रिपोर्ट है, आपने रिपोर्ट सुनाई,
हाँ मैंने ही सुनाई है, लेकिन जीडीपी तो
जिस तरीके से फेक जीडीपी को जो है वो मार मार के टुड्डे मार मार, और सिर्फ जीडीपी उनका ना जो कहते हैं ना, उन्होंने सारे अंडे अपने एक बास्केट में डाले वो गारमेंट्स, इसके अलावा मुझे बताएं कि कोई
डाइवर्सिफिकेशन नहीं है उनकी,
कुछ भी नहीं है,
नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है
कुछ भी नहीं है।
जिसने 1971 में हमारे बात की वो इंडिया से भी ऊपर चली गई है उनकी।
आप ऐसे ट्रीट करें कि पाकिस्तान वो बच्चा है जो 2 साल की उम्र में चलना नहीं सीखा,
15 साल में सीखेगा,
देख सीखा, ये नेचर है। आज हम जिस कंट्री की एग्जाम्पल देते हैं ना, 250-250 साल की इनकी हिस्ट्री है। अभी पीछे चले जाए 40-50 साल पीछे चले जाए, 60s में चले जाए, या क्या हालात होते थे? किसी को वो औरत के वोट को देने की इजाजत
नहीं
है इस मुल्क में, जो है किसी औरत को प्राइम मिनिस्टर बनने का भी दिया हो किसी को? अभी वो कमला हैरिस साहिबा जो है कोशिश तो कर रही है, बन जाएंगी, देखते हैं क्या होता है। तो आपसे 50-60 साल पीछे चले जाए, ज्यादा पीछे नहीं, 100-200 साल पीछे चले जाए, तो वो और आपको पता चलेगा कि ये कितने कंजर्वेटिव या किस तरीके से।
ब्लैक्स जो है उनको सिनेमा में
ब्लैक्स आज तक देख लें क्या हाल
करते हैं, आगे उनको बैठने नहीं देते थे, उनको कहते थे जाओ बिल्कुल पीछे जाके बैठना तुमने।
तो अब वो जब ये सब चीजें ये 250 साल में जाने के बाद इन्हें ये चीज समझ आ गई कि भजन ऐसे नहीं चलेगा, समझे 250 साल। तो आप लगता है ये 76, 77, 78 ईयर्स में हमारे, अच्छा हमारे कोई मसाइल भी उनसे डिफरेंट, हमारे यहाँ तो और भी दूसरे मसले बहुत हैं। तो आपको लगता है कि यार, मैं कहता हूं कि अगले 50 साल में ना पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा
इंशाल्लाह,
इंशाल्लाह
जरूर जरूर।
घबराना तो कहते ना
बिल्कुल
नहीं,
नहीं है,
हाँ
नहीं, नहीं, वो पढ़े लिखे अगर ये जो नई जनरेशन अगर ऊपर आई तो इंशाल्लाह।
मुझे बताएं सबकी एक लाइफ है ना, जिंदगी है, ये समझते हैं कि ये फिरौन है,
ये फिरौन अपने आप को
ठीक है,
यस यस,
लेकिन अल्लाह का एक निजाम है, अल्लाह के निजाम में जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल। इनको क्या लगता है सारी जिंदगी एक हुकूमत करते रहेंगे? मुल्क ना, हम क्या कहते हैं, हमें बस लगता है कि यार बस अगले हमारी जितनी जिंदगी है ना, अल्लाह जितनी, बस उसके बाद ये शायद पाकिस्तान बंद हो जाएगा। नहीं जनाब, ये जब तक कयामत नहीं आ जाती है पाकिस्तान रहेगा
इंशाल्लाह। अच्छा, हम एक वो बता दें जी आपको, अफ्रीकन सफारी का अगर आपको फैमिली पैक चाहिए, सिर्फ इतना बता दो कि हमारे ऑफिस 5359 टिम्बली बुलेवार्ड से,
नहीं वो तो मैंने,
कितना डिफरेंस है, कितना फासला है। अब वो फासला हम आपसे पूछ सकते हैं, गाड़ी से कितना है, जहाज से कितना है, रक्षे से कितना है, टांगे से कितना है, चल के जाओगे तो कितना है, बस से कितना है, वो हम कोई भी आपसे पूछ सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है, वो आपको हमको बताना पड़ेगा। और अगर आपने हमको बता दिया तो फिर वो जो है फैमिली पैक। अरे आपको वीकेंड में बताया था यार, जुजल कर लेना था ना अभी तक, क्या है, व्हाट इज दिस, वरना हमें कुछ अच्छा पहना के हमको भेजना ही पड़ेगा।
कह रहे हैं भाई को 12 साल का बना दें,
हाँ मुंह में चूसनी डाल के
चले जाएंगे,
बिल्कुल,
मतलब ये भी ज्यादती मेरे साथ ही होनी है।
छुट्टी के लिए तुम्हें भेज रही है, एक दिन काम से छुट्टी मिल रही है।
नहीं, मैंने क्या लाइन सफारी करके जाना, अफ्रीकन लाइन सफारी के,
वहाँ पे अफ्रीकन लाइन देखना ना।
अच्छा वो अफ्रीकन लाइन होगा, ठीक हो गए जनाब,
वहाँ पे होंगे ना।
तो आपने भी अगर जाना है तो आप कॉल कर सकते हैं 416-620-1778। टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक ले लेते हैं और कुछ लम्हे और हैं आपके साथ, तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। और अगर आप किसी ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जहां आपको मेरी सुरीली आवाज सही सुनाई नहीं दे रही, तो एक नंबर डायल कीजिए 6478724900, 6478724900। और इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि यूनिवर्सल प्रमोशन आपके लिए लेकर आ रहा है हांडी मिल्टन हलाल फूड फेस्टिवल, जो कि मिल्टन में होने जा रहा है, और कैफी खलील साहब लाइव परफॉर्मेंस देंगे कमिंग सैटरडे 17 अगस्त को। ये बिल्कुल फ्री इवेंट है और पार्किंग भी फ्री है। तो जनाब आप अपनी फैमिली के साथ यहां पहुंचिए, 805 सांता मारिया बुलेवार्ड मिल्टन, 17 अगस्त कमिंग सैटरडे को। और ये यूनिवर्सल प्रमोशन आमिर शमसी आपके लिए कैफे खलील लाइव परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं आपके शहर मिल्टन में। और अगर आप चाहते हैं वहां कोई स्टॉल बुक कराना है या स्पॉन्सरशिप्स के लिए, तो आप कॉल कर सकते हैं, बल्कि आप सारा को ही कॉल करें 6478217861, 6478217861 सारा का नंबर है, और उनको कॉल कीजिए अगर आपने कोई भी स्पॉन्सरशिप्स या कोई स्टॉल बुक कराना है। चलिए जनाब टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। हमारा नंबर 416-620-1778।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
ए संदेश जरा ध्यान नाल सुनो, गवर्नमेंट ग्रांट बच्चों अते परिवारों वास्ते उपलब्ध है। अगर तुहाडी इनकम $60,000 तो घट है ते तुहाडे बच्चे 12 साल तो घट उम्र दे हन, तां तुहानू गवर्नमेंट तो $12,000 तो लैके $60,000 तक दी ग्रांट मिल सकदी है। ए पैसा तुहाडे अकाउंट विच 3 हफ्तियां दे अंदर अंदर आ सकदा है। ए गवर्नमेंट ग्रांट सर्विस ओंटारियो अल्बर्टा अते BC विच उपलब्ध है। होर जानकारी लई शावेज दे नाल 647-0241, 647-769-0241।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनीग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। CIBC.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। CIBC एम्बिशंस मेड रियल।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक लियो थ्रू आउट ओंटारियो। नो अपॉइंटमेंट नीडेड। ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक लियो 519-622-0660। quicktrucklube.com।
Milton, we are back, this time with Pakistan sensation, Kaifi Khalil. Third annual Handi Milton Halal Food Festival, Saturday, August 17th, from 12 p.m. to 10 p.m. Milton Community Sports Park, 805 Santa Maria Boulevard. Free admission, free parking. For details, call Amir Shamsi.